Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmanand Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Atharva Vediya Brahman Bhag ki Prashnopanishad ka vichar hum log kar rahe hain. Is Upanishad ke 6 prakaranon mein se चतुर्थ प्रकरण का विचार हो रहा है। चतुर्थ प्रकरण है ऋषि गार्ग्य के अलग अलग 5 प्रश्न, तुम पदार्थ शोधन उपयोगी आचार्य पिपलाद जी के प्रति प्रथम कंडिका में बताए गए और उनका उत्तर आचार्य पिपलाद जी दे रहे हैं। ते गार्गे के आचार्य पिपलाद जी के प्रति किए गए 5 प्रश्न तथा उन 5 प्रश्नों का उत्तर का जो अर्थ निकलेगा वो होगा शोधित तुमर्थ। तत्त्वमसी वाक्यार्थ ज्ञान है पराविद्या, उसी का विस्तार से निरूपण करने के लिए 3 प्रकरण हैं, चौथा, पांचवा, छठवा प्रश्न। उनमें से प्रथम तुम पदार्थ शोधन चतुर्थ प्रकरण में हो रहा है। तुम पदार्थ का शोधन करते हुए प्रथम प्रश्न, द्वितीय प्रश्न तथा तृतीय प्रश्न के उत्तर हो गए हैं। चतुर्थ प्रश्न का भी उत्तर हुआ। 4 प्रश्नों के उत्तर आचार्य गार्गे ने, ऋषि गार्गे के आचार्य पिपलाद जी ने दिए हैं। पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा गया कि तुम पदार्थ रूप जो आत्मा है उसकी स्वाभाविक अवस्था ये जागृत नहीं है, औपाधि की है, और जिस उपाधि की वह अवस्था है वह उपाधि है बाह्य इंद्रिया, और तीनों अवस्थाओं में शरीर की सुरक्षा करना भी आत्मा का धर्म नहीं है, वह प्राण का धर्म है, वो भी आत्मा की उपाधि होने से प्राण का जो शरीर संरक्षण रूप धर्म है वह आत्मा में प्रतीत होता है, लेकिन वस्तुतः वह शरीर संरक्षण करता है प्राण ही, और स्वप्न अवस्था भी अंतकरण रूप जो मन है उसकी है और भाषित होती है मन के साथ आविद्यक तादात्म्यपन्न तम पदार्थ में। वस्तुतः तुम पदार्थ जैसे जागृत अवस्था से रहित है ऐसे स्वप्न अवस्था से भी रहित है, ये तृतीय प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया गया। और चतुर्थ प्रश्न का उत्तर देते हुए ये कहा गया कि सुषुप्ति अवस्था भी जो जागृत और स्वप्न अवस्था में विशेष विशेष कार्याकार वृत्ति विषयक मन रहता है, वृत्तियों से युक्त ऐसी सारी वृत्तियां उस समय शांत हो जाती है, जिस समय उस समय मन की सामान्य अवस्था रहती है, और वह सामान्य अवस्थापन्न मन है अविद्या विषयक। उस समय उसका विषय क्या होगा जागृत और स्वप्न में, तो जागृत में अविद्या का परिणाम रूप जो ये संसार है कार्य स्थूल कार्यात्मक तदाकार वृत्तियां रहती हैं, और स्वप्न में वासनामय जो संसार तदाकार वृत्तियां वृत्तियों से युक्त मन रहता है। सुसुप्ति अवस्था में मन है वो उस समय किस आकार का होगा, तो इन जागृत और स्वप्न पदार्थों का जो सामान्य रूप है वो सामान्य रूप है अविद्या रूप। इसलिए अविद्या को आलंबन बना करके वो रहता है। जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में अविद्या के कार्य को आलंबन बना करके मन की वृत्तियां रहती हैं। सुसुप्ति अवस्था में मन का आलंबन होती है जागृत स्वप्न पदार्थ की कारणभूता अविद्या। इसलिए अविद्या आलंबनक मन को कहा जाता है सामान्य अवस्थापन्न मन। तो मन की दो अवस्थाएं, एक सामान्य अवस्था एक विशेष अवस्था। विशेष अवस्थाएं होगी जागृत और स्वप्न में, और विशेष अवस्था के समय वह किसी न किसी या तो वासनामय कार्य को आलंबन बना करके रहेगा या तो व्यावहारिक सत्ता वाले जागृत पदार्थ को आलंबन बना करके रहेगा। जब विशेष अवस्थापन्न होगा मन, और जब सामान्य अवस्था में होगा उस समय उसका आलंबन रहेगा निरालंब, तो मन रहता नहीं है। जो भी वृत्ति होगी मन की उसका कोई न कोई आलंबन जरूर होगा। तो सुसुप्ति में कौन होगा आलंबन? उस अवस्था में जो रहेगा। तो सुसुप्ति अवस्था में कौन है? वो कारण अवस्था है। तो उस समय है अविद्या, स्वरूप का अज्ञान, मूल अविद्या, और वही अविद्या मन का आलंबन बनेगी। तो अविद्या आलंबनक मन का नाम है सामान्य अवस्थापन्न मन। और उस अविद्या आलंबनक मन में उस समय चिदाभास रहता है, और सामान्य ज्ञान है वो, उसे कहा जाएगा सामान्य ज्ञान। जो विशेष विशेष वृत्तियां मन की होती है माना जाता है उन्हें मन को विक्षिप्त करने वाली, वो विक्षेप अवस्था है मन की। उस समय मन विक्षिप्त रहता है, यानी विक्षेप रूपी जो वृत्तियां हैं कार्य विषयक उनसे युक्त रहता है। विक्षेप शब्द का अर्थ होता है कार्य, और कार्य को विषय बना करके रहने वाले मन को कहा जाएगा विक्षिप्त मन। तो विक्षिप्त मन रहता है उस समय कब? जागृत और स्वप्न में। और वो विक्षिप्त मन अपने अधिष्ठान भूत जो आनंद स्वरूप आत्मा है उसके आनंद का आभास ग्रहण करने में, सुख का प्रतिबिंब ग्रहण करने में असमर्थ माना जाता है। जैसे बहुत तेजी से बहने वाला जो जल है उस जल के किनारे के वृक्षों का प्रतिबिंब चंचल जल में स्पष्ट रूप से भाषित नहीं हो पाता, और स्थिर जल है यदि तो उसमें उस जल के किनारे जो वृक्ष हैं उनका प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से भाषित होता है। ऐसे ही सामान्य अवस्थापन्न मन में कोई भी विक्षेपात्मिका वृत्ति न होने से उसे माना जाता है विक्षेप रहित चित्त। उसमें उसके अधिष्ठान भूत सुख स्वरूप आत्मा का सुखाभास होता है सुसुप्ति के समय, और वो जो सुखाभास है उसे ही कहा गया विक्षेप रहित होने के कारण अपने अधिष्ठानभूत सुख स्वरूप आत्मा के सुखाभास से युक्त मन सामान्य अवस्थापन्न मन है, उस समय उस सुख की उसे अनुभूति होती है। वो सामान्य मन में सुखाभास पड़ रहा है, वह अनुभव में आ रहा है। वह सुखाभास किसी कर्म का फल रूप नहीं है। कर्म का फल भोगने के लिए तो भोगायतन स्थूल शरीर और भोगोपकरण इंद्रियों की तथा विषयों की आवश्यकता होती है। तो उस समय कोई भोगोपकरण नहीं है, भोगायतन शरीर भी सब व्यापार नहीं है। व्यापार युक्त भोगोपकरण होने चाहिए, व्यापार युक्त भोगायतन होना चाहिए और गृहित होने वाले विषय चाहिए। तो माना जाता है कर्मफल का कर्मफलभूत सुख अनुभव में आ रहा है, वो जागृत स्वप्न में ही आता है। सुसुप्ति के समय कर्मफल का अनुभव नहीं होता, इसलिए वह सुख है आत्मसुखी। लेकिन आत्मा का भी सीधा स्वरूप ही अनुभव में नहीं आ रहा है, अविद्या है न उस समय। तो आत्मा को आत्मा के सुख स्वरूपता को आवृत्त करके रखने वाली अविद्या उस समय विद्यमान है, इसलिए उस सुख का आभास मात्र प्रतिबिंब मात्र अनुभव में आता है। वह सुखाभास भी कर्म फल नहीं है, जो आत्मा का आनंदाभास सुसुप्ति के समय अनुभव में आ रहा है वह कर्मफल विलक्षण है। आत्मा का ही जो कर्मफलभूत नहीं है उसका प्रतिबिंब रूप है, वो उसकी छाया रूप है और वो हो रहा है अविद्या आलंबनक मन में। सामान्य अवस्था में मन है, इसलिए माना जाता है मन भी व्यापार युक्त न होने से जिसको आलंबन बनाया हुआ है उस अविद्या आश्रित मन को ये सुख हो रहा है। तो माना जाता है कि यह सुख और सुसुप्ति अवस्था उस सामान्य मन की आलंबन भूता अविद्या की अवस्था है, अविद्या की अवस्था है। वो उद्भूत संस्कारों से युक्त मन की अवस्था जैसे स्वप्न है, ऐसे अविद्या आलंबनक मन की अवस्था कहो या मन की आलंबन भूता अविद्या की अवस्था ये सुसुप्ति है ये कहो। और ये अविद्या आलंबनक मन या स्वयं अविद्या ये आत्मा नहीं है, आत्मा की उपाधि है, बाह्य इंद्रियों के तरह ही, वो भी कारण रूपा उपाधि है और इसलिए उपाधि की ही सुसुप्ति अवस्था भी हुई। सुसुप्ति अवस्था को भी कहा जाएगा अनात्मा का ही धर्म। वो कौन से अनात्मा का धर्म है? सामान्य मन की आलंबन भूता अविद्या रूपा रूप जो अनात्मा है उस अविद्या रूप अनात्मा का धर्म कहो या अविद्या आलंबनक मन का धर्म कहो, उसे ही पंचकोशों में से आनंदमय कोश भी कहा जाता है। यह आनंदमय कोश का धर्म है सुसुप्ति अवस्था, ये कहा गया चतुर्थ प्रश्न का उत्तर देते हुए। इसलिए त्वम पदार्थ इन तीनों अवस्थाओं से वस्तुतः रहित है, ये तीनों अवस्थाएं उसके उपाधि की है और ये उपाधि विनिर्मुक्त अपने स्वरूप से है। त्वम पदार्थ तीनों उपाधियां वो तीनों अवस्थाएं तीन उपाधिगत हैं और आत्मा अवस्था त्रयातीत है। उस अवस्था त्रयातीत आत्मा को कहा जाएगा शोधित त्वमर्थ, और वही ये अवस्था त्रय में अनुभव में आने वाले जितने भी पदार्थ हैं उन सब पदार्थों का अधिष्ठान है। जो जागृत स्वप्न में अनुभव में आने वाले पदार्थ हैं उनका अनुभव करता है और उनके अनुभव के विषय हैं। ऐसे स्वप्न में अनुभूयमान पदार्थ, स्वप्न में अनुभव करने वाला स्वप्न पदार्थों का जो है वह और उसका जो उपकरण वो भी, और सुषुप्ति के समय जो अनुभव में आ रहा है सुख और अविद्या, ये भी इसी आत्मा में कल्पित है, त्वम पदार्थ में कल्पित है। त्वम पदार्थ इन सब का अधिष्ठान है, इन सारी उपाधियों में जो आश्रित तथा आश्रय के रूप में प्रतीत हो रही है उपाधियां, उन सारी उपाधियों का अधिष्ठान है, वह अध्यस्त किसी उपाधि रूप नहीं है। इसे निश्चित करना है, उन इन सब अवस्थाओं के तथा अवस्थाओं के आश्रयभूत अधिष्ठान का स्वरूप निर्धारण करने के लिए। पंचम प्रश्न है, कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति। ये पंचम प्रश्न जो है वो है किस लिए, कि अधिष्ठान का यानी त्वमर्थ का वास्तविक स्वरूप सुनिश्चित करने के लिए। गार्ग्य ने आचार्य पिप्पलाद जी से कहा कि सर्वे यानी अध्यस्त जो भी भाषित हो रहे हैं विषय के रूप में, उनके अनुभवकर्ता के रूप में और अनुभव के रूप में तथा अनुभव के साधन के रूप में, सब के सब जितने प्रतीत हो रहे हैं वे हैं अध्यस्त, और जिसमें अध्यस्त है संप्रतिष्ठित है का मतलब कस्मिन संप्रतिष्ठिता, जिसमें प्रतिष्ठित है वो कौन है, किसमें अध्यस्त है, इनकी कल्पना का अधिष्ठान कौन है। इस प्रकार का ये पंचम प्रश्न है। एक प्रकार से ये सब तो बताए गए अनात्मा, और अनात्मा है अध्यस्त, संप्रतिष्ठित का अर्थ है अध्यस्त कल्पित, जो अध्यस्त पदार्थ है उन्हें कहा जाता है अर्थाध्यास, और उनकी प्रतीति को कहा जाता है ज्ञानाध्यास। दो प्रकार का अध्यास ब्रह्म सूत्र के अध्यास भाष्य में भाष्यकार भगवान ने बताया है, एक अर्थाध्यास दूसरा ज्ञानाध्यास। जो कल्पित पदार्थ दिख रहे हैं उन्हें कहा जाता है अर्थाध्यास। सुक्ति में जो रजत दिख रहा है वो भी अध्यास है, वो है अर्थाध्यास, और सुक्ति में रजत की जो प्रतीति हो रही है वो है ज्ञानाध्यास। भ्रांति को कहा जाता है ज्ञानाध्यास, और भ्रांति के विषय को कहा जाता है अर्थाध्यास। तो जागृत स्वप्न और सुसुप्ति में जो जो प्रतीति हो रही है वो प्रतीतियां हैं ज्ञानाध्यास, और जिनकी प्रतीति हो रही है वे हैं सुक्ति में प्रतीयमान रजत के तरह अर्थाध्यास। तो इस प्रकार ये अनात्मा मात्र हो गए तीनों अवस्था में प्रतीयमान अर्थाध्यास रूप और उनका ज्ञान तीनों अवस्था में होने वाले अनुभव ये है ज्ञानाध्यास। और जो भी अध्यास होता है वह निरधिष्ठान नहीं होता, यानी बिना सत्य अधिष्ठान के नहीं होता, उनका अधिष्ठान सत्य होता है, अबाधित होता है। अध्यास का तो बाद हो जाता है, अर्थाध्यास भी बाधित होगा, ज्ञानाध्यास भी बाधित होगा। का मतलब इन तीनों अवस्था में जो हम अनुभव कर रहे हैं ये अनुभव भी मिथ्या सिद्ध होगा, और इस जिसका अनुभव हो रहा है वह पदार्थ भी मिथ्या निश्चित होगा, बाधित निश्चित होगा। जिसके ज्ञान से इनका बाध हो जाता है, मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है, उसे कहा जाता है अधिष्ठान। और उस अधिष्ठान का स्वरूप निश्चित करने के लिए ये प्रश्न है, कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति, गार्गे का ये पंचम प्रश्न जो है ना आचार्य पिपलाद जी के प्रति, वो किस लिए है कि जिसके ज्ञान से ये सब बाधित हो जाएंगे, जागृत स्वप्न सुसुप्ति में प्रतीयमान पदार्थ और उनकी प्रतीति मिथ्या निश्चित हो जाएगी। वह कौन है ये पूछा गया, कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति से, इन सब का किसमें अध्यारोप हो रहा है, इनके अध्यारोप का अधिष्ठान कौन है। इसका उत्तर देने के लिए ये शुरू हो रही है सप्तम अष्टम कंडिका। तो सप्तम कंडिका में पहले एक दृष्टांत आ रहा है अधिष्ठान को समझाने के लिए, और ये समझाया जा रहा है जिनको, यद्यपि बताना चाहिए था कुल अवस्थाएं कितनी हैं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति और समाधि पूरी अवस्था, ऐसी चार अवस्थाएं हैं। तो उनमें से अधिष्ठान के स्वरूप को समझाने के लिए दृष्टांत के रूप में बताना चाहिए था तुरीय अवस्था को, समाधि को बताना चाहिए, लेकिन ये माना जाता है दृष्टांत जो होता है ना, वो दृष्टांत दिया जाता है प्रसिद्ध अर्थ, दार्ष्टांत जिसको समझाया जा रहा है उसके समझ में जो आता है दृष्टांत, वो दृष्टांत दिया जाता है। और समझाया जा रहा है श्रुति के द्वारा तुरीय स्वरूप को, किसको, जो तुरीय स्वरूप में प्रतिष्ठित हुए हैं, ब्रह्मनिष्ठ हुए हैं, समाधि में पहुंचे हुए हैं, स्थित प्रज्ञ हैं, उनको नहीं समझा रही है श्रुति। गार्गे का प्रश्न और पिपला जी के द्वारा दिया जाने वाला उत्तर रूपा जो श्रुति, ये समझा रही है किसको, आपको हमको। और हम लोग समाधि से दूर दूर से भी परिचित नहीं है, अपरिचित है, लेकिन सुसुप्ति अवस्था तो सबके परिचय की है ना, सब जानते हैं। सुसुप्ति में सभी रोज रोज पहुंचते हैं, सुसुप्ति का अनुभव सबको होता है। और सुसुप्ति के समय ये भी मालूम है कि जागृत और स्वप्न में जैसे त्रिपुटी होती है, ऐसी त्रिपुटी सुसुप्ति के समय नहीं होती है, ये भी सबको मालूम है। भेद नहीं रहता उस समय, अभेद रहता है, क्योंकि भेद प्रतीत कराने वाली जो मन की विशेष विशेष वृत्तियां हैं